ओम शांति। संगम युग पर बाबा हम सब बच्चों को राजयोगी बनाता है, राइट? सभी समझते हैं कि हम राजयोगी हैं, राजा हैं। ख्याल रहता है, ये याद रहता है, राजा हैं। बाबा हम बच्चों को राजा बेटा, राजा बेटा, राजयोगी बोलते 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 राजा बना ही देगा। 100% श्योर है बाबा हमको राजा बना ही देगा। मैं आपको एक कहानी बताती हूं। एक राजा थे, वो आइलैंड के ऊपर एक अलग समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा टीला था और वहां पर जो लोग रहते थे वो एक व्यक्ति को पसंद करते थे और उसको राजाई देते थे 4 साल के लिए। ध्यान से कहानी सुनना। उस जगह पर जो रहने वाले थे वो लोग एक व्यक्ति को सिलेक्ट करते थे, एक व्यक्ति को नियुक्त करते थे, 4 साल की राजाई देते थे। उस 4 साल के अंदर उसको जो कुछ करना है वो कर सकता है, राजा है। लेकिन 4 साल के बाद उनका ये नियम था, 4 साल के बाद उस व्यक्ति को, उस राजा को नाव में बिठाकर और दूसरी तरफ ले जाते थे जिधर जंगल था और उसमें उस राजा को छोड़ देते थे और वहां बहुत ऐसे से जानवर होते थे जो उसको खा लेते थे। बहुत समय से ये सिस्टम चली आ रही थी। तो एक बार एक व्यक्ति को उन्होंने नियुक्त किया राजा की तरह और वो बहुत होशियार था, बहुत समझदार था। तो पहला साल उसने सब पूरा अच्छी तरह से समझ लिया कि राज्य के अंदर क्या क्या है, सब सिस्टम उसने अच्छी तरह से जान लिया, बहुत हैप्पी था। दूसरे साल और ज्यादा हैप्पी, बहुत खुश, मस्त। तीसरे साल उसकी खुशी बढ़ती गई। चौथे साल बहुत खुश था, मस्त था। दूसरे जो राजाएं आते थे ना, उनकी क्या हालत होती होगी? पहला साल बहुत अच्छा, दूसरे साल उसकी खुशी थोड़ी कम। क्यों? हाँ, आप तो सब बहुत होशियार हो। और तीसरे साल उसकी खुशी और कम और चौथे साल, हाँ हाँ, उसको डर रहता था कि अब तो मेरे को ले जाएंगे और वहां डाल देंगे, मेरे को जानवर सब खा लेंगे। तो चौथे साल तो उसकी हालत खराब हो जाती थी। और ये जो राजा था ना, इसकी हर साल खुशी बढ़ती गई, बढ़ती गई। और लास्ट वाला जो चौथा साल था उसे बहुत खुश था वो। फिर उसको नाव में बिठाया गया, लास्ट अंतिम दिन आया तब, और नाव वाला जो खे करके जा रहा था वो देख रहा था कि मैंने तो सुना है कि ये राजा जो आए हैं ये बहुत होशियार है, इस ये तो इतना खुश है, समझता ही नहीं है कि मैं इसको कहां ले जा रहा हूं। जो नाव को खे रहा था ना नाविक, वो ये विचार कर रहा था। तो उस राजा ने उसको पूछा कि तुमको कितनी नौकरी मिलती है, कब से काम करते हो? बोला मैं तो 25 साल से काम कर रहा हूं। तो उसने पूछा, कितना तुमको नौकरी तनख्वाह कितनी मिलती है? तो नाविक ने बताया कि मुझे इतना मिलता है। तो राजा ने बोला कि मैं तुमको इसका डबल दूंगा। तो वो सोच रहा है कि इस राजा को पता ही नहीं है कि कल तेरा क्या होने वाला है। डबल दूंगा, क्या तुमको मैं हायर कर सकता, तुमको मैं नौकरी पर रख सकता हूं? तो बोला, कुछ जवाब नहीं दिया, ऐसे हंसते हंसते उसने पार कर दिया। और जैसे ही वो नाव दूसरे साइड में गई, यहां जंगल था, वो नाविक देखता ही रह गया कि यहां तो इतनी रौनक लगी पड़ी है, इतने लोग उसको इंतजार कर रहे हैं और जंगल की जगह मंगल हो गया है। ये क्या है? क्योंकि वो तो 25 साल से वही काम कर रहा था, वहां तो जंगल ही था दूसरे पार। तो वो बड़े इज्जत से उतरा और उसका बहुत भव्य स्वागत हुआ। अच्छा, अब ये ऐसा कैसे हुआ, आप लोग क्या समझते हो? हाँ, कि 4 साल वो राजा था ना, 4 साल में तो वो जो कुछ चाहे वो कर सकता था, राजा था, जो चाहिए वो कर सकता था। और उसको पता था 4 साल के बाद क्या होने वाला है। तो उसने क्या किया, उस 4 साल के अंदर जिस तरफ उसको ले जाया जाने वाला था, उसको वो जंगल को मंगल बना दिया। बड़े सुंदर सुंदर महल, बारी, बगीचा, लोग, सब सेट कर दिया। और अब वो आराम से वहां रहेगा, होशियार था ना। तो संगम युग पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम सबको नहीं पता है क्या कल क्या होने वाला, हमको नहीं पता है क्या? पता है ना। हमारे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, उस जन्म में जी करके सब कुछ ट्रांसफर, जहां उनको जाना है। अब देखो, यहां पर एक बहुत समझने की बात है कि मैं आत्मा हूं, मुझे कहां जाना है मुझे तो नहीं पता है, राइट? लेकिन ये तो पता है ना कि जाना है, यहां तो रहने वाली नहीं हो ना। तो जब जाना है और जहां जाना है, जाना तो है ही है, वो तो पक्का है, तो जहां जाना है वहां सब कुछ मैं भेज सकती हूं। जहां जाना है उस जगह को, उस स्थान को कहो, भाग्य कहो, वो सब कुछ मैं बना सकती हूं, वो सब मेरे हाथ में है। मैं राजयोगी आत्मा हूं, योग बाद में, पहले क्या हूं? राजा, राजयोगी। जो चाहिए मैं कर सकती हूं, सब कुछ मेरे हाथ में है। और 4 साल के बाद उसके हाथ में नहीं था, राइट? तो मेरे भी हाथ में, जिस दिन मैं ये शरीर छोड़ देती हूं उसके बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो आज मैं स्वतंत्र हूं, जो चाहिए मैं कर सकती हूं, कोई मुझे रोक सकता नहीं, हर बात में मैं स्वतंत्र हूं। और जिस दिन ये शरीर छूट जाता है उसके बाद मैं परतंत्र हूं, जो किया है उसी का रिजल्ट मुझे मिलने वाला है। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन के अंदर सब ट्रांसफर कर दिया, सब तन मन धन सब लगा दिया जहां उनको जाना है वहां के लिए, क्योंकि वो राजा। न सिर्फ उन्होंने किया अपने लिए, हम सबको भी वही सिखा रहे हैं। हम लोग भी संगम युग पे क्या कर रहे हैं, सब ट्रांसफर कर रहे हैं, सब ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर हम राजा कितने समय के लिए, न सिर्फ एक जन्म के लिए, 21 जन्म भी नहीं बोलूंगी मैं तो, भरपूर खजाना रहेगा। क्योंकि द्वापर में हम खाली थोड़ी हो जाएंगे। आज की मुरली के अंदर भी जयंती बहन जी बता रहे थे ना कि द्वापर में भी इतना धन दौलत सब होगा ताकि हम मंदिर बनाएंगे, बहुत भरपूर रहेंगे। तो वो भरपूरता आई कहां से? क्योंकि सत्युग त्रेता में तो हम कुछ दान पुण्य नहीं करने वाले, कुछ भी श्रेष्ठ कर्म करने वाले नहीं। वो सब संगम युग पर जो हम जमा कर रहे वो वहां प्राप्त होगा। जन्म जन्म की राजाई हम राजयोगी संगम युग पर भर लेते हैं और अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। तो एक बात हम बच्चों को जरूर याद रखना है कि जाना है, यहां परमानेंट रहना नहीं है। एक और कहानी बताती हूं, आज मैं आपको कहानियां ही बताऊंगी। एक बहुत कंजूस व्यक्ति था, बहुत कंजूस। उसको घी बहुत पसंद था, घी होता है ना, बटर से जो घी बनाते हैं, बहुत पसंद था। तो वो रोज प्याले में घी देखता था, खुश होता था, उसको सूंघता था, बड़ा खुश हो जाता था, रख देता था, खाता नहीं था, क्योंकि वो बहुत कंजूस था। ध्यान से सुनना ये कहानी, बहुत कंजूस था। खाएगा तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा ना, सूंघेगा तो खत्म नहीं होगा ना। तो जितनी भी उसकी बिजनेस थी वो सब पैसे उसके बैंक में जमा होते गए, जमा होते, क्योंकि वो खर्चा ही नहीं करता था, मर गया, शरीर छोड़ दिया। तो उसका एक बेटा था, उसको सब कुछ मिल गया। वो जैसे ही उसके फादर ने, उसके पिताजी ने शरीर छोड़ा, तो वो बचुआ जो पैसा था ना बैंक में, हॉस्पिटल बनाने लगा, धर्मशाला बनाने लगा, कॉलेज बनाने लगा, यूनिवर्सिटी खोलने लगा। तो उसकी मम्मी ने उसको बोला, देख बेटा, तेरा बाप इतना कौड़ी कौड़ी जमा करके, इतना जमा किया, खून पसीने की कमाई है, और तू तो लुटा रहा है। तो बोला, नहीं मम्मी, मैं लुटा नहीं रहा हूं। लेकिन फिर वो जो उसकी प्लानिंग थी वो करता रहा, करता रहा। तो उसकी मम्मी ने उस अपने भाई को बुलाया, मामा जी को, और उसको बोला, देखो इसको समझाओ। तो उसके मामा ने भी उसकी मां की तरह उसको समझाया। तो एक दिन उसने बोला, मामा जी आप बैठो, मैं लुटा नहीं रहा हूं, आपने कभी अपने घर को, पुराने घर से नए घर में आप कभी गए हो? तो मामा जी ने बोला, हां मैंने नया घर बनाया था, तो मैं उसमें शिफ्ट हुआ था, उसमें मैं गया था। तो बोला बच्चे ने कि आप ये बताओ मामा जी कि जब आप नए घर में गए थे तो आप पहले चले गए थे या आपने सामान पहले भेजा था? ध्यान से सुनना, आपने पहले सारा सामान भेजा था या आप खुद पहले गए थे? तो मामा जी ने सोचकर बोला कि पहले तो मैंने सारा सामान भेजा था, मोटा मोटा जो बड़ा बड़ा सामान था सब भेजा, फिर थोड़ा सा किचन में थोड़ा सा सामान रखा था लास्ट में, वो भी फिर सारा वो भी भेजा, फिर मैं गया। बोला मैं भी वही तो कर रहा हूं, मैं भी वही कर रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कैसे, तो आप क्या बताएंगे? जहां जाना है, हाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, और फिर एक दिन हम भी चले जाएंगे। और अगर हम ट्रांसफर नहीं करें और ऐसे ही चले जाएं, तो वो सब सामान तो वैसे ही रह जाएगा ना, राइट? नहीं भेजा तो वो तो वैसे ही रह जाएगा। तो संगम युग पर हम क्या कर रहे हैं? जानना है वो याद रखना है जानना है जरूर। कोई भी परमानेंट यहां हमेशा के लिए यहां बैठा नहीं है, रह सकता नहीं है। तो हम जाने के पहले ही तो अपना सब कुछ ट्रांसफर करते हैं ना। जो करते हैं वो ही हमको मिलेगा, जो रह गया वो तो रह गया, वो नहीं मिलेगा। तब मामा को भी समझ आई कि मेरा बहनोई जो था, इसका फादर बाप, वो तो ऐसे ही चला गया। बोलते हैं इसलिए कंजूस जो होता है ना, वो सबसे बड़ा दानी होता है। लेकिन ऐसे दान से क्या फायदा? सबसे बड़ा दानी होता है क्योंकि वो खाता ही नहीं है, घी तक भी नहीं खाया। उसको इतना पसंद घी, सूंघ सूंघ के रख देता था, अपने प्रति तो उसने काम में लाया ही नहीं। तो इतना बड़ा वो दानी हुआ, कंजूस। लेकिन उस तरह के दान से उसको फायदा नहीं हुआ। और यहां पर हम लोग संगम युग पर क्या कर रहे हैं? खा भी रहे हैं और सब ट्रांसफर कर रहे हैं, सब हम भेज रहे हैं, सब हम शुभ कार्य में लगा रहे हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको, बहुत बड़ा हमको सौभाग्य मिला है संगम युग पर। जो जो कुछ मेरे पास है, जिस प्रकार का खजाना है, हम सब उसको सेवा में लगा रहे हैं। कोई के पास कोई खजाना, कोई के पास कोई खजाना, हर प्रकार का खजाना तो हर एक के पास है भी नहीं, लेकिन जो है उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। किसके लिए? अगर हमको यह बात याद न हो कि मेरे लिए मैं ट्रांसफर कर रही हूं, अगर वो बात मुझे याद न हो तो अभिमान भी आ सकता है। लेकिन जो कुछ मैं कर रही हूं मेरे लिए कर रही हूं, मेरा घर बन रहा है सत्युग में और मैं मेरे लिए ट्रांसफर कर रही हूं, तो अंदर में एक प्रकार का एहसान हो, जिसके जिसको भी हम सेवा कर रहे हैं, जिसके लिए भी कर रहे हैं, तन से, मन से, धन से, हमारे अंदर एक एहसान होना चाहिए कि आपने हमको वो चांस दिया, मौका दिया, ताकि हम अपना आने वाले भविष्य में के लिए हम जमा कर सकें। तो उसमें जमा करते हुए भी एक निर्माणता रहेगी, क्योंकि अगर अभिमान आ गया, खत्म हो गया, जमा नहीं हुआ। कहते अभिमान पाप का मूल है, दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। तो जो कुछ मैं संगम युग पर कर रही हूं, बहुत हमें निर्माणता से, प्यार से, क्योंकि मैं मेरे लिए ही कर रही हूं, मैं राजा हूं, जो चाहिए मैं कर सकती हूं, सब कुछ मेरे हाथ में है। कभी हम ये नहीं कह सकते हैं क्या करूं, मैं तो चाहती हूं कर सकती नहीं, नहीं, इसका मतलब मैं राजा नहीं, मैं राजयोगी नहीं। याद रखो हम योगी आत्मा हैं, सब कुछ मेरे हाथ में है। अब मैं आपको एक और कहानी बताती हूं। मैंने आपको बोला ना कहानियां बताऊंगी। एक राजा था, उसको कोई संतान नहीं थी, बच्चे नहीं थे, और बहुत चंचल प्रकृति का था, बहुत हंसाने वाला, खुश रखने वाला। तो अपनी दरबार के अंदर उस राजा ने बोला, मच्छर था, मच्छर को ऐसे पकड़ा हाथ में और दरबार को पूछा सभी से, बता मेरे हाथ में क्या है? बोला मच्छर। बोलो ये जिंदा है कि मर गया है? सब लोग सोचने लगे, जिंदा है पता नहीं, इसके हाथ में है, मर गया है पता नहीं, कैसे बोले क्योंकि दिखता ही नहीं है। तो एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत होशियार, वो खड़ा होकर बोला, राजन मैं बताऊं? बोला हां बताओ। बोला ये आपके हाथ में है? बोला मेरे हाथ में तो है ही है ना, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा प्रश्न है कि ये जिंदा है कि मर गया है? हाथ में तो है ही। बोला राजन आपके ही हाथ में है। अब आप समझ गए होंगे क्या हाथ में है। कि अगर आप चाहो तो मुट्ठी खोल दो तो वो जिंदा है, अगर आप चाहो। हाँ, उसने ये भी बताया था राजा ने कि जो इसका राइट आंसर देगा, ये मरा हुआ है कि जिंदा है, जो इसका राइट आंसर देगा उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा, क्योंकि उसको राजा को कोई संतान तो थी नहीं। तो उस व्यक्ति ने, समझदार व्यक्ति ने ये कहा कि राजन ये तो आपके ही हाथ में है। तो बोला हाथ में तो है लेकिन जिंदा है कि मर गया? तो बोला ये भी आपके ही हाथ में है, क्योंकि आप चाह, अगर मैं कहूं कि ये जिंदा है, आप उसको ऐसा करके दिखाओगे तो मर जाएगा। तो जब राजन को ये कहा कि आपके ही हाथ में, आप इसको जिंदा रखो या मारो, बोला हां ये बहुत होशियार है, आधा राज्य उसको मिल गया। यहां तो शिव बाबा हमको पूरा राज्य दे रहे हैं, पूरा राज्य दे रहा, आधा नहीं, सब किसके हाथ में है? पक्का? तो हम कभी ये बहाना नहीं कर सकते हैं, क्या करूं मैं करना तो चाहती लेकिन क्या करूं मेरे हाथ में तो है ही नहीं, हम राजयोगी हैं, नहीं तो ये टाइटल मेरी कैंसिल, सब कुछ मेरे हाथ में है, लिख लो नोटबुक पे ही नहीं, फोन में नहीं, कहां दिमाग में, मैं कौन? हां मैं संगम युग पर राजयोगी हूं, मैं जो चाहूं कर सकती हूं, राजा माना ही जो चाहे वो कर सके ना, तो मैं राजयोगी हूं, राजा पहले योगी बाद में, मैं राजयोगी हूं, सब कुछ मेरे हाथ में है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो मेरे हाथ में ना हो, क्योंकि भाग्य विधाता बाबा सिर्फ संगम पर हमारे साथ है, भाग्य लिख रहा है, भाग्य विधाता मेरा पिता है। तो कैसे हम कह सकते हैं क्या करूं? नहीं, सब कुछ मेरे हाथ में है, जो मैं बोल बोलती हूं वो होता है, हर बोल के पीछे तथास्तु लिखा हुआ है। तो इतने अंदर के विश्वास से कोई भी शब्द मैं अपने लिए बोलूं, तथास्तु, हर शब्द के अंदर शक्ति है, बल है, तथास्तु, होगा ही। तो अगर मैं कहती हूं क्या करूं तो क्या होगा, और अगर मैं कहती हूं सब कुछ मेरे हाथ में है तो क्या होगा, हो ही जाएगा। शिव बाबा भाग्य विधाता मेरे साथ है संगम पर, भूलो नहीं, भगवान भाग्य लिख रहा है। कब कोई कोई का बहुत भाग्य में बहुत दुख होता है, बहुत कुछ होता है, तो हम लोग क्या कहते, पता नहीं जब भगवान भाग्य लिख रहे थे तो कहां थे, बोलते हैं ना, कहां थे, कब लिखता है? सत्ययुग में नहीं, त्रेता द्वापर कलयुग में नहीं, सिर्फ अभी। तो
वो मेरा भाग्य लिख रहा है तो मैं उसको काट कैसे सकती, क्या करूं? नहीं, राजा बोल नहीं सकता है। अगर राजा राज दरबार में बैठा है और वो कहे क्या करूं तो शोभे नहीं। राजा माना राजा आज्ञा कर, आप आज्ञा करो राजा, तो हम राजयोगी हैं। भाग्य विधाता बाबा मेरा भाग्य लिख रहा है, कैसे कह सकती हूं मैं क्या करूं? सब कुछ कर सकती हूं, और अगर न करूं, कर सकती हूं अगर न करूं तो अंत में मुझे बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। इस पर मैं एक और कहानी आपको बताती हूं, ध्यान से सुनना, वो कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे संगमयुगी जीवन से कनेक्टेड है, संबंधित है। पहले पुराने जमाने में क्या होता था, लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते थे ना, तो ग्रुप बनाकर जाते थे क्योंकि उनको पैदल जाना पड़ता था, मोटर कार तो होती नहीं थी पुराने जमाने में। तो जितना वो लोग सामान ले जा सकते थे ना दूसरे गांव के लिए, उतना वो उठाते थे क्योंकि उनको पैदल जाना है, सामान भी उठाना है, तो पूरा तो ना उठा सके, बहुत तो नहीं सामान ले जा सकते थे, तो थोड़ा थोड़ा सामान पीठ पर रख करके वो चलते थे ग्रुप के अंदर, क्योंकि दिन रात उनको पैदल करना पड़ता था, कमाने के लिए जाना पड़ता था, ग्रुप में जाते थे। तो एक बार एक ग्रुप जा रहा था और अंधेरा सा होने लगा, एक बहुत दिव्य आवाज आई, रुको रुको रुको। तो वो लोग सब चलते चलते रुक गए, फिर आवाज आई झुको झुको झुको, सब झुक गए, फिर आवाज आई भर लो, जितना चाहिए उतना भर लो भर लो भर लो। तो उनके पास जो बैग था ना, उसमें उन्होंने कुछ नीचे से डाला झोली में, और डालते समय सोचा कि पैदल चलना है और ये तो पत्थर है, भारी हो जाएगा, पैदल चलना है। लेकिन वो दिव्य आवाज थी तो उन्होंने भरा, कोई ने थोड़ा ज्यादा भरा, कोई ने कम भरा, फिर आवाज आई चलो, सब चल पड़े। फिर आवाज आती है कि सुबह जब होगी तो तुम बहुत खुश भी होगे और बहुत पछताओगे भी। आप लोग तो ऐसे हंस रहे हो जैसे आप लोग को सब पता ही है। समझ में आ गया। तो वो लोग को नहीं समझ में आया क्योंकि वो तो राजयोगी नहीं थे ना, ज्ञानी नहीं थे, उनको नहीं समझ में आया। वो सोच रहे थे ऐसी क्या बात है जो हम खुश भी बहुत होंगे और पछताएंगे भी बहुत। फिर सुबह हो गई और जब उन्होंने अपनी अपनी झोली में देखा तो वो डायमंड था, हीरे थे, हीरे थे। तो जिन्होंने बोध भरा ना, बहुत खुश हुए, कम भरा वो भी खुश हुए, वाह ये हीरे हीरे रियल हीरे थे, खुश भी हुए और बहुत पछताए भी। क्यों? और भर लेते। अच्छा, वो उनको तो बेचारों को पता ही नहीं था ना कि वो हीरे हैं, और हम लोगों को है पता। रोज भगवान हमारी झोली भरता है, संगम युग पर रोज हमें भरपूर करता है, झोली भरता है। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, हम कहते बाबा तो बोलते हैं लेकिन है तो बहुत मुश्किल, एक वॉल लगा देते हैं, दीवार खड़ी कर देते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है। अरे मुश्किल नहीं है, हीरे हैं, थोड़ा एक बार वजन हो भी जाएगा तो क्या हर्जा है। कई बार हम सोचते हैं कि इतनी तो हमारे ऊपर कारोबार पहले से ही है और फिर टीचर ने बोल दिया 10 घंटा योग करो, 12 घंटा योग करो, अखंड योग करो, ये भी लिखो, चार्ट भी लिखो, ये तो तू मच है। अरे कुछ नहीं, ये हीरे हैं, मेरे जीवन को मूल्यवान बनाने वाले हैं, हमको उससे घबराना नहीं है, वजन ज्यादा हो जाएगा ऐसा सोचना नहीं है, हम टू मच बिजी हो जाएंगे सोचना नहीं है, हमें उसको महत्व देना है, प्रायोरिटी देना है, उसको हमें पहले रखना है, क्योंकि वो हीरे हैं। बहुत सारे जीवन के अंदर बातें आती है, लौकिक और अलौकिक का बैलेंस नहीं कर पाते हैं, अरे ये संगम युग बार बार आने वाला नहीं है, पूरे 5000 साल में एक सृष्टि चक्र में कितनी बार आता है संगम युग? जस्ट वन, एक बार, सिर्फ एक बार। शिव बाबा भाग्य विधाता कब आता है? जस्ट एक बार, भाग्य बनाकर चला जाता है। ये वो समय चल रहा है, भगवान हीरों से हमको भरता है, हमारी जीवन रूपी यात्रा मूल्यवान बनेगी, भारी नहीं होगी, हमको उसका महत्व पता होना चाहिए। लेकिन वो लोग अंधेरे में चल रहे थे ना, उनको पता नहीं था कि हम क्या भर रहे हैं, हम भी अंधेरे से ही निकले हैं, कलयुग के अंधेरे से शुरू हुई है मेरी संगम युग की यात्रा। लेकिन संगम युग के महत्व को समझकर, जन्म जन्म की भरपूरता को याद रख करके मुझे पुरुषार्थ करना है, सब कुछ मेरे हाथ में है, क्योंकि मैं राजा हूं, राजयोगी हूं। जब मुझे मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास हो, राजा हूं उसका एहसास हो, तब ही मैं योगी बन पाती हूं। अगर मैं क्या करूं, अधीनता है, आत्मनिर्भरता नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, तो मैं योगी नहीं बन पाऊंगी, योग लगेगा ही नहीं। वो शान चाहिए, राजा की शान हो, नहीं तो परेशानी होते रहेंगे। देखो हिंदी में वर्ड कितना अच्छा है, शान, और एक है परेशान माना शान से परे। तो अगर मैं परेशान ही होती रहूंगी तो क्या मैं राजा हूं, क्या मैं योगी हूं? योग लगेगा नहीं, योग किससे रहेगा? परेशानियों से। क्या करूं, ये है ये है ये है, सब अपनी ही परिस्थितियों से ही योग रहेगा। तो पहले राजा हूं, अपनी शान में स्थित रहे, मैं जो चाहे वो कर सकती हूं, वो शान हो, तब मेरा योग इतना अच्छा लगेगा। माना बाबा मेरे कंबाइंड, बाबा मेरे पूरा साथ रहेंगे, कर्म करते हुए भी बाबा मेरे साथ रहेंगे और माला माल कर देंगे। ये संगम युग माला माल बनने का टाइम है, ये समय फिर आने वाला नहीं है। तो मुझे राजयोगी बन करके 21 जन्मों के लिए तो गारंटी है, वारंटी है, राजा बनने का चांस है। संगम युग की एक एक घड़ी बहुत मूल्यवान है, हीरा है हीरा, जितना चाहिए मैं अपने झोली में भर लूं, सब मेरे हाथ में है। जो शब्द मैं बोलूं, शब्द बोलने से भी पहले जो सोचूं, जो मैं संकल्प करूं, वो भी मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि मैं राजयोगी हूं। जो सोचती हूं उसके पीछे तथास्तु होना ही है, होना ही है। तो जब मुझे पता है कि होना ही है, तो क्यों फिर मैं कैसे कोई भी ऐसे वर्ड शब्द जो कि मैं नहीं चाहती हूं वो सोच भी कैसे सकती हूं। मैं राजा हूं, जो कहूंगी जो सोचूंगी वो होना ही है, होगा ही। इतनी अंदर में मेरे खुद के अंदर इतना विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास मुझे राजा बनाएगा ही। तो जब हम संगम युग पर आते हैं, स्पिरिचुअल बर्थ लेते हैं, हमारा ज्ञान से जब जन्म होता है, उस दिन तो हम राजा थे ही नहीं, लेकिन बाबा हम बच्चों को राजयोगी हो, राजयोगी हो कह कह करके हमारे जो सुसुप्त सोई हुई जो शक्तियां थी वो जैसे बाबा जागृत कर देता है और हमको राजा बना देता है। तो संगम युग है राजाओं का राजा बनने का समय। ठीक है, सभी कहानियां याद रहेगी? खाली याद रहेगी क्या? हाँ, धारण करेंगे और सच्चे राजा बनेंगे। ठीक है, तो अभी हम सब राजयोगी, थैंक यू, हम सब राजयोगी अभी इतना पावरफुल 3 मिनट और है, उसमें पावरफुल योग करेंगे बाबा के साथ। ओम शांति।